ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर किए हवाई हमले में 50 से अधिक की हुई मौत। इसराइल और ईरान में रहे नेपालियों को सावधानी अपनाने का नेपाल सरकार ने किया है आग्रह। फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव की मौन अवधि में हो सकने वाली चालबाजी रोकने के लिए विशेष निगरानी के प्रबंध किए गए हैं। निर्वाचन आयोग का कथन। और पहाड़ी और हिमालयी जिलों में मतदान सामग्रियां लेकर मतदान अधिकृत की रवानगी हुई शुरू। अब समाचार विस्तार से। शुरू में अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। इसराइल और अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई मिसाइलें दागी है। वहीं ईरान ने भी पलटवार किया है, जिसके बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 3 सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरान के रक्षा मंत्री गाइड्स कमांडर इसराइली हमलों में मारे गए। इसराइल के मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़े 2 सूत्रों और एक क्षेत्रीय सूत्र ने बताया कि माना जा रहा है कि ईरान के रक्षा मंत्री आमिर नसीरजादेह और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर मोहम्मद पाकपुर इसराइली हमलों में मारे गए हैं। खबरों के मुताबिक इन हमलों में 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। ईरान के एक स्थानीय अधिकारी ने सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA को बताया है कि 28 फरवरी को एक स्कूल पर हुए इसराइली हमले में 40 लोगों की मौत हुई है। बताया गया है कि ये हमला ईरान के दक्षिणी होर्मुज़गान प्रांत में मिनाब काउंटी में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर हुआ। गवर्नर मोहम्मद राद मेहर ने कहा कि साजारेह तैयबेह गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले में 48 लोग घायल हुए हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। ईरान में लगभग पूरी तरह इंटरनेट ब्लैकआउट है, क्योंकि पहले भी एक साइबर हमला हुआ था। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब ने पुष्टि की है कि ईरान ने राजधानी रियाद और देश के पूर्वी क्षेत्र को निशाना बनाकर हमले किए। सऊदी विदेश मंत्रालय ने बयान के अनुसार वायु रक्षा प्रणाली ने सभी हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। सऊदी अरब ने यह भी कहा कि उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उसकी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी कार्रवाई के लिए नहीं होने दिया जाएगा। घटना के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चल रही कार्रवाई को बड़ा सैन्य अभियान बताया है और ईरानी सरकार की सेना से हथियार डालने की अपील की है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि देशों ने मानव हित के लिए दोनों तरफ के हमलों को जल्द से जल्द रोकने का आग्रह किया है। नेपाल सरकार ने इसराइल और ईरान में मौजूद नेपाली नागरिकों को सावधानी अपनाने का अनुरोध किया है। परराष्ट्र मंत्रालय ने आज एक एडवाइजरी जारी कर इसराइल और ईरान से संबंधित निकायों द्वारा सुरक्षा संबंधी दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। एडवाइजरी में काठमांडू स्थित परराष्ट्र मंत्रालय, तेल अवीव और दोहा स्थित नेपाली दूतावासों के साथ संपर्क में रहने का आग्रह किया गया है। इसराइल या ईरान दौरे पर जाने की योजना बना रहे नेपाली नागरिकों से स्थिति सामान्य न होने तक अपनी यात्रा स्थगित करने का अनुरोध भी मंत्रालय ने किया है। मध्य पूर्व में बढ़े तनाव के कारण त्रिवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से विभिन्न 7 अंतर्राष्ट्रीय शहरों में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो गई है। शारजहां, दोहा, दुबई, कुवैत सिटी, आबूधाबी, कतर और दमाम विमानस्थल पर उड़ान पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण त्रिवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से आज दोपहर और रात को होने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। ये जानकारी विमानस्थल के महाप्रबंधक टेकनाथ सिटौला ने दी। इसी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव की सभी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। चुनाव के लिए मतपत्र, मतपेटिका सहित अन्य निर्वाचन सामग्रियां सभी जिलों में पहुंचाई जा चुकी है। पहाड़ी और हिमालयी जिलों के मतदान केंद्रों में तैनात होने वाले मतदान अधिकृत आवश्यक निर्वाचन सामग्रियां सुनिश्चित कर कार्य क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वहीं तराई, मधेस और शहरी जिलों में मतदान अधिकृतों का अनुशिक्षण हो रहा है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। इसी बीच निर्वाचन आयुक्त शमशेर राणा ने कहा कि निर्वाचन के मौन अवधि में हो सकने वाले दाव पेच को रोकने के लिए विशेष निगरानी का व्यवस्था किया गया है। आयुक्त राणा ने कहा कि मौन अवधि में निर्वाचन आचार संहिता विपरीत राजनीतिक दल और उम्मीदवारों ने मतदाता को प्रभाव पार सकते हैं, इसलिए आयोग सचेत है। निर्वाचन आयोग ने कानून विपरीत गतिविधि रोकने के लिए जिला अनुगमन अधिकृत और सुरक्षा निकाय परिचालन करके विशेष निगरानी का किया है। आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के चार पर्यवेक्षक संस्था ने संपूर्ण तैयारी और सुरक्षा के हिसाब से निर्वाचन का वातावरण सकारात्मक और शांतिपूर्ण दिख रही है। राष्ट्रीय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोक, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोक, गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल गैसस और निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति नेपाल योक ने आज पत्रकार सम्मेलन से पूरे देश में निर्वाचन के उत्सव के लिए तैयार है। देश निर्वाचन के लिए तैयार होने के साथ मतदाता भी देश विदेश से अपने अपने मतदान केंद्र पर जाने का क्रम चलने के साथ पर्यवेक्षक संस्थाओं ने निर्वाचन लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार स्तंभ है, इसलिए इसको सफल बनाने का आह्वान किया है। फागुन 18 गते घाटी लगायत पहाड़ी क्षेत्र और 19 गते तराई क्षेत्र में धूमधाम सहित मनाए जाने वाले फागु पूर्णिमा अर्थात होली पर्व का मर्यादित, सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस ने माथत के निकाय को निर्देश किया है। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल ने होली पर्व के मौलिकता और सांस्कृतिक महत्व पर असर पड़ने वाले भड़कीले गतिविधि नहीं हो, इसलिए मादक पदार्थ बेच बिकन तथा सेवन में और जबरदस्ती रंग लगाने, पानी से भिगोने जैसे गतिविधि नहीं होने देने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मिलाने के लिए 77 जिलों में जिला प्रहरी कार्यालय को परिपत्र किया है। संखुआ सभा की मकालू गांवपालिका 5 और 2 जोड़ने वाली बेली ब्रिज पुल टूट गया है। मकालू 5 के नूम और वार्ड नंबर 2 सेदुआ जोड़ने वाली अरुण नदी में निर्माण किए गए बेली ब्रिज टूट गया है। आज सुबह 9 बजे सीमेंट लिए लावे ट्रक पार होने के दौरान बेली ब्रिज टूट गया। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय शंखुआ सभा के DSP कुमार प्रसाद मैनाली ने दी। बता दें कि वार्ड सवारी बड़ा सवारी साधन पार करने के दौरान पुल गाड़ी सहित टूट गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर किए हवाई हमले में 50 से अधिक की हुई मौत। इसराइल और ईरान में रहे नेपालियों को सावधानी अपनाने का नेपाल सरकार ने किया है आग्रह। फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव की मौन अवधि में हो सकने वाली चालबाजी को रोकने के लिए विशेष निगरानी के प्रबंध किए गए हैं। निर्वाचन आयोग का कथन और पहाड़ी और हिमालयी जिलों में मतदान सामग्रियां लेकर मतदान अधिकृतों की रवानगी हुई शुरू। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।